आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धे लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य विरचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस पर जो क्षुल्लक मनोहरलालजी वर्णी जिनका नाम है सहजानंद, उन्होंने इस पर प्रवचन किए हुए हैं, इसको हम यहाँ देख रहे हैं। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा था उसका अर्थ होता है जो लक्ष्मी के निवास के निलय है। लक्ष्मी ने यहाँ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के जो रहने का ठिकाना है, विलीन विलयम जिन्होंने राग आदि का नाश कर दिया है, ऐसे जो वीर कहने से वीर जिन भी होते हैं, और वीर का उन्होंने दूसरा भी अर्थ किया था वीर, हाँ, यानी जो आत्मज्ञान रूपी लक्ष्मी देते हैं, इस तरह से उन्होंने भगवान का नमस्कार करके मंगलाचरण करके ये प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य कि मैं आत्मानुशासन कहूंगा। किसके लिए? बहुवे जीवों के मोक्ष प्राप्ति के लिए। मैं बताता हूँ, आत्मा का अनुशासन का अर्थ उन्होंने किया है अनुयने टू फॉलो, उसके अकॉर्डिंगली। तो कहते हैं कि जैसे मैंने अनुकूल, हाँ, अनुरूप, ये शब्द कैसे अनु यानी उसके समान, ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पेज नंबर 4 पर उन्होंने पहले पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन में लिखा था कि अनुशासन का अर्थ क्या है, प्रयोजन की अनुकूलता पूर्वक शासन करना। शासन क्या है? टू रूल, जैसे एम्पायर जो होता है टू रूल, राजा क्या करता है, रूल करता है, वैसे। कौन सा प्रयोजन है? तो कि आत्मा का जो स्वभाव है उसका विकास होना। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और आनंद, उसका विकास, यही अपना प्रयोजन है। तो उसके विकास के अनुरूप आत्मा पर शासन होता है, उसको अनुशासन कहते हैं, आत्मानुशासन। यानी ये ज्ञान का परिपूर्ण विकास और आनंद का परिपूर्ण विकास हो, इस प्रकार से आत्मा को उसमें लगने के लिए जो उपदेश दिया जाता है उसको कहेंगे आत्मानुशासन। कल उन्होंने 6 सामान्य गुणों की थोड़ी चर्चा की थी, वो तो विषय जब आएगा आगे। अब यहाँ पेज नंबर 5 पर आते, 5 नंबर, शक्यानुष्ठान व क्रमिक उपदेश का आदर। देखो, उपदेश दिया जाता है और उसमें हमें जो शक्य होता है, शक्यानुष्ठान, हमारी शक्ति के अनुसार हम उसको आचरण में लाते हैं, उसको कहते हैं शक्यानुष्ठान। देखो अभी उसका अर्थ वो क्या बताते हैं प्रवचन में हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। उपदेश वह दिया जाता है जो किया जा सकता है, हाँ, जो शक्य है उसी का उपदेश देंगे। ये जो आत्मा का अनुभव करने का उपदेश दे रहे हैं, उसकी विधि बता रहे हैं, जिन्होंने स्वयं किया है उसी का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल है। शक्य ने पॉसिबल, जो पॉसिबल है उसी का उपदेश दिया जाता है। जो नहीं किया जा सकता ऐसी बात का उपदेश करना, यह बेतुकी बात है, ने बेकार की बात है। कोई परिणमन पर का परिणमन करने का उपदेश देंगे तो कहते ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तो जो नहीं किया जाता ऐसे बात का उपदेश देने से क्या फायदा है। तो उपदेश भी आचार्य भी जो हमारे जो गुरुजन है ज्ञानी है वो उपदेश वही देते हैं जो हम कर सकते हैं। भगवान ने भी वही उपदेश दिया है। उपदेश में वह कहा जाता है जो एक प्रासंगिक सिलसिलेवार हो, सिलसिला है ना उसका जो क्रम एक के बाद एक जो होता है क्रमपूर्वक जो होता है सिलसिला, जिसको हमने पर्यायों का सिलसिला चलेगा, यानी कोई भी विशिष्ट प्रोसेस चलता है क्रमिक। तो उपदेश में वह कहा जाता है जो एक प्रासंगिक सिलसिलेवार हो, जो सिलसिलेवार नहीं है, जो कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। सिलसिलेवार नहीं, वो तो विशिष्ट वो पद्धति पूर्वक है, ऐसा नहीं कि कभी कहेंगे तुम दूसरे का कल्याण करो आत्मा का कुछ नहीं कर सकते हो, कभी करेंगे वो शुभ दान देना शुभ यात्रा आदि शुभ राग करना तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो ये क्या ये बराबर नहीं है। कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, तो जो कभी कुछ कहे चाहे कुछ अच्छी भी बात कहे जाए लेकिन ऐसे अटपट वे सिलसिले का, यानी जो सिलसिले से रहित ऐसा निरूपण विवेकी जनों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता। जो विचार करने वाले विचारवंत है तो कहते ये क्या कह रहे, कभी ऐसी बात करे कभी वैसी बात करते। जैसे किसी को उपदेश दिया जाए, देखो जिंदा सांप के फन में मस्तक में से एक मणि निकलती है, उस मणि को निकाल ले आओ तो तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्या कहते, वो सांप के वो फन निकलता है ना उसमें एक मणि निकलती है, हाँ तो उसको ले आओ तो तुम्हारे रोग मिट जाए, ऐसे तो चलती है ना भ्रांत कल्पना। कोई इस मणि को निकालने लगे तो उसका शरीर ही न रहेगा, सांप डस लेगा और वह खत्म हो जाएगा। अरे सांप की मणि लाना अशक्य है, इस प्रकार का अशक्य उपदेश देना विवेकी जन पसंद नहीं करते हैं। यों ही अटपट वे सिलसिले की बात कहना यह भी ज्ञानियों की गोष्ठी का तत्व नहीं रहा। जैसे थोड़ी देर में कोई कहे कौवा के दांत है या और अटपटे बात कोई करे तो वह पागलपन जैसी बात लगेगी, इस प्रकार की बातें विवेकियों को ग्राह्य नहीं होती। हम कहते ये पछता नहीं है, यानी उसका उपदेश को कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अब अभीष्ट हितकर उपदेश से आत्मानुशासन संभव है। यो ही कोई अनिष्ट बात कहने लगे, अभीष्ट है ना वो तो हितकर है जो चाहिए हमें, इष्ट जो है ऐसा इष्ट और हितकर। यो ही कोई अनिष्ट बात कहने लगे उपदेश में कि जिससे खेद हो, ऐसी बात का भी उपदेश विवेकजन नहीं देते हैं। इस ग्रंथ में ये समस्त दोष नहीं है। देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिसको हम कहेंगे जिनवाणी जो है जिसको हम आगम कहते हैं, वो तो कहते कि पूर्वापर विरोध से रहित होते। ये रत्नग्रंथ शावकाचार में भी उसके तो छह बातें बताई है, तो आप तो के द्वारा बताई है, आप तो नहीं अरिहंत भगवान। दूसरी बात वो पूर्वापर विरोध से रहित होती है, यानी कहीं हिंसा का पोषण करेंगे कहीं उसका निषेध करेंगे ऐसी बात कहीं पर भी नहीं होती है, किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकती, बहुत सारे उसके लक्षण बताए हैं। तो कहते यहाँ पर भी कोई दोष नहीं है, यानी कहीं कुछ ऐसा कहीं नहीं लिखा है जो सामने वाला ग्रहण कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं, ऐसा ही उपदेश वहां दे दिया है। सिलसिले से जैसे वैराग्य पुष्ट हो आत्मा में ज्ञान प्रकाश बढ़े वह वर्णन किया जाएगा, यानी इसमें वैराग्य की पुष्टि और जैसे आत्मा में आत्मज्ञान की वृद्धि हो जाए ऐसा उपदेश मिलेगा यहाँ पर। शक्यानुष्ठान बात ही इष्ट बन जाए आत्मा का हित करे, शक्यानुष्ठान है जो हम कर सकते हैं जो किया सकता है जा सकता है उसको कहेंगे शक्यानुष्ठान, आत्मा का हित करे ऐसे तत्व का ही उपदेश इसमें कहा जाएगा। इस कारण यह समस्त उपदेश वास्तव में आत्मानुशासन है, जिससे आत्मा अपने आप में अपने हित को पाने के लिए अनुरूप शासित हो जाए। ऐसा यह उपदेश आत्मानुशासन है। आत्मा ही स्वयं अपने में ही जो कुछ परिणमन करेगा वो करेगा, परंतु यहाँ निमित्त रूप से उपदेश भी ऐसा ही दिया जा रहा है, उसकी बात यहाँ बताई। ग्रंथ रचना का निमित्त, यानी क्यों लिखा जा रहा है। आचार्य प्रतिज्ञा जब करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो कौन सा ग्रंथ लिखूंगा उसका नाम भी है, और हमारे सारे ग्रंथों के नाम ऐसे ही है जिसमें उसका विषय क्या आने वाला है वो प्रकट होता है। अंदर कुछ अलग बात और बाहर कुछ नाम अलग, ऐसा नहीं होता। रत्नकरण शावकाचार, तो रत्नकरण कौन से, वो समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न का करंडक जो है, ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये नाम कैसे है कि वो विषय को बताने वाले नाम, ऐसा ये आत्मानुशासन नाम है। ये तो नाम की बात है, नाम तो बता ही देते हैं, और फिर कहते मैं क्यों लिख रहा हूँ उसका हेतु भी बताते हैं, किसके निमित्त से। तो कहते ग्रंथ रचना का निमित्त, गुणभद्र आचार्य ने अपने धर्म भाई लोकसेन मुनि को, जो कि कर्मोदयवश विषयों से मलिन हुआ था, अच्छा, उसे संबोधित करने के लिए यह ग्रंथ बनाया है। देखो जो मुनि कार्तय ने दीक्षा भी ले ली है, अभी उस जमाने में भी ऐसे होते थे ना, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी तो हमने देखा था कब से चली आ रही, पर द्रव्यलिंग तो विषयों में नहीं जाएगा, वो तो बराबर उसका आचरण ठीक चलेगा, परंतु यह ऐसा लिया है कि जो विषयों में उसका उपयोग उसमें लगता होगा शायद, तो उसको संबोधित करने के लिए यह ग्रंथ बनाया है, अथवा उनको संबोधित करने के निमित्त से सर्व जीवों के उपकार के लिए यह ग्रंथ बनाया है। किसी का नाम लेकर वो तो बनाते हैं, परंतु हेतु होता है कि सभी ऐसे जीव इसको भविष्य में भी इसको सुने पढ़े, अपना कल्याण कर ले। वो आता है ना परमात्मा प्रकाश में है ना, प्रभाकर भट्ट किस में आया, परमात्मा प्रकाश में ही है ना। ग्रंथ बनाने के पूर्व इष्ट देव को जो नमस्कार किया जाता है, कहीं सिद्धों को नमस्कार करते हैं, कहीं पंचपरमेष्टि को कहते हैं, अब यहाँ वीर कहने से वीर भगवान भी आ गए और अन्य तीर्थंकरों को भी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हमने वो इसमें समय ज्ञान चंद्रिका जीवकांड की शुरुआत में एक श्लोक की उन्होंने 10-12 पद्धति से उसके अर्थ लगाकर दिखाए, प्रोडमल जी ने वो गुण रयन भूषण उदयम, उसके कितने अर्थ किए उन्होंने, गुणरत्न रूपी भूषण वगैरह उसका अर्थ। ऐसे यहाँ पर भी वीर शब्द के उन्होंने 2 अर्थ बताए। ग्रंथ बनाने के पूर्व इष्ट देव को जो नमस्कार किया जाता है वह निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए किया जाता है, यानी कार्य निर्विघ्न रीति से पूर्ण हो जाए इसके लिए ऐसा मंगलाचरण या पंच परमेष्टि का नाम स्मरण को नमस्कार किया जाता है, अथवा इसके लिए नहीं, अथवा कहके ये निर्विघ्न होना हो तो होगा, उसके लिए कोई भगवान कोई करने वाला तो है ही नहीं, कहते अथवा इसके लिए भी नहीं, ऐसा कहके 2 ऑप्शन बताए उन्होंने। अच्छी बात कहने लगे तो वह स्वयं समस्त मंगलाचरण है। क्या कहते हैं, ये जो उपदेश है वो समस्त ही मंगलाचरण है, वो सब मंगल रूप ही है। यह तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ये सही कारण है, क्योंकि हमने ये जो और ये मार्ग जो है वो भगवान तीर्थंकरों से चला आ रहा है, इसलिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत की जाती है। अभी परीक्षा जाते हुए जाते समय माँ के पैर छू के क्यों चले जाते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं। और यह एक प्रयत्न श्रोताजनों के भले के लिए कहा जा रहा है ना। सो आपने कुछ पूछा है शोभा? हाँ ठीक है। सो श्रोताजनों को कुछ प्रामाणिकता आ जाए इसके लिए मूल देव का वंदन किया जाता है, जिससे श्रोता भी जाने कि यह प्रभु की परंपरा से चला आया हुआ प्रतिपादन। ये बहुत महत्व की बात है। जो उपदेश जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ, तीर्थंकरों तक चला जाना चाहिए। यानी सर्वज्ञ से जो बताई हुई बात है, सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर दिव्य ध्वनि निकली, गणधरों ने उसको जानकर वो आगम की रहने बादशाह की रचना की, उनके बाद परंपरा से आचार्यों की परंपरा से ही वो तो चलता रहता है। तो ये आचार्यों, ये गुणभद्र आचार्य भी बहुत पहले हुए थे ना, तो उनकी ये सारे आचार्यों की परंपरा से ये आगे चला रहा है। तो सर्वज्ञ के साथ कनेक्शन बता रहे। अब कोई आज उठ कर कहते हमारा मार्ग है, क्योंकि सामने वाले जो ऐसे भाई तुम कांजी वाले हो, तुम श्रीमद वाले हो, उनका अपना कोई अगर पंथ शुरू किया होता तो वो तो सही नहीं है। जिसको सर्वज्ञ के साथ परंपरा के साथ कनेक्शन नहीं है, उनका उपदेश अपनी ओर अगर कोई कहता है तो वो ठीक नहीं है, वो सही भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी भगवान को नमस्कार करके ये जो प्रामाणिकता बताई जाती है, क्योंकि ये उपदेश जो है वो परंपरा से चला रहा है, उन्होंने स्वयं अनुभव किया है और फिर उसका लोगों को उपदेश दिया। तो कहते श्रोता भी जाने कि यह प्रभु की परंपरा से चला आया हुआ प्रतिपादन, प्रतिपादन यानी कथन। अमोल कोई शब्द नहीं समझ में आया तो पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, क्योंकि शब्द कोई मराठी हिंदी गुजराती वाले होते हैं और आप अंग्रेजी मीडियम वाले हो, नहीं समझे तो पूछना। हाँ, यो मंगलाचरण में वीर प्रभु का वंदन करके आत्मानुशासन ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की है। नलिन भाई, किसने प्रतिज्ञा की है? गुणवत्ता, ये ग्रंथ उनका लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी हम दो नंबर को पढ़ेंगे। दुखाद विभेषि नितराम अभिवांचसि सुखम अतो अहमप्यात्मन दुखापहारि सुखकरम अनुशास्मि तवानुमतमेव। अभीष्ट वक्तव्य का संकल्प। ग्रंथ प्रारंभ में गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, यानी संबोधन कर रहे, हे आत्मन, तू दुखों से निरंतर डरता है और सुखों को चाहा करता है। ये तो हर प्राणी यही चाहता है और उपाय भी इसीलिए कर रहा है। अब वो सही है कि नहीं, वो तो बात अलग है। यहाँ तो आत्मन कहकर पुकार रहे हैं, ये मनुष्य कहकर या कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव अपने को आत्मा तरीके जान नहीं रहा है। मैं मनुष्य हूँ, यही इतना ही मेरा जीवन है, बस इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है, तो मेरी जो कुछ 80-100 साल की जिंदगी है उसके लिए मैं सुखी कैसे रहूँ, इसके लिए हमारे सारे प्रयत्न हैं। क्योंकि माँ बाप ने बचपन में हमको स्कूल में डाला, हम पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, फिर निकले वहाँ से ऐसे सब स्क्वीज आउट होकर। और फिर कमाने लगे, और कमाना भी है तो भोगना भी है ना। अभी मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। अपने को आत्मा तरीके हमने पहचाना नहीं, ये मूल में भूल है। तो आत्मन तरीके उसको पुकार रहे, क्यों, क्या बोला? हे आत्मन, अच्छा, तू दुखों से निरंतर डरता है, सुखों को चाहा करता है। सो मैं भी दुखों को दूर करने वाली और सुख को उत्पन्न करने वाली ही बात कहूंगा, यानी अन्य कोई नहीं बात करूंगा, कोई कष्ट देने वाली बात नहीं करने वाला। कि तू जो दुखी है तो ऐसी बात करूंगा कि वो तो आप उसको सुनकर अगर वैसा करेंगे तो आप भी सुखी हो जाएंगे, दुख दूर होकर आप भी सुख के मार्ग पर चलेंगे। तो सुख को उत्पन्न करने वाली ही बात कहूंगा जो कि तेरे अनुकूल ही पड़ेगी। तू चाहता भी यही है कि दुख दूर हो और सुख उत्पन्न हो। तो इस ग्रंथ में वही बात कही जाएगी जो दुखों को दूर करे और सुख को उत्पन्न करे। ऐसा भय न लाना कि पता नहीं यह गुरु सुख से छुटाकर कष्ट का साधन बतावेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है अरे हम तो सुखी है, अरे यहाँ इनके पीछे लग जाए तो हमारा ये सुख छूट जाएगा, हमारा पैसा इतने हमने जुटाया है बड़ी मेहनत से, ये अपने हाथ चला गया, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कैसे। और लगता है कि ये कष्टप्रद मार्ग है, ये कष्ट वाली चीज ये बता रहे हैं। तो हमारा सारा जो जिसको हम मान रहे थे सुख से हमसे छीना जाएगा, ये कह रहे हैं। तो कहते ऐसा भय न लाना कि जो गुरु बता रहे तो ये हमें सुख से छुटाकर कष्ट का साधन बतावेंगे। जैसे कि आजकल जो दूसरों को नियम लिवाने पर ही उतारू रहा करते हैं, देखो स्वयं क्षुल्लक जी है, परंतु आम तरीके कहाँ क्या चल रहा है समाज में उससे बहुत अच्छे जानकार थे। किसी के पास जाए, महाराज के पास कहो या अन्य किसी के पास, तो क्या करते हैं नियम लेना लिवाने पर उतारू रहा करते। नियम लेना है उनको कोई नेम देना के अर्थ क्या है, ये तुम अंगीकार करो, आज से रात को भोजन नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, अचार नहीं पीऊंगा, मैं आलू प्याज को छोड़ दूंगा, यानी कुछ न कुछ क्रिया में, ये इतने उपवास करो तुम, एकासन करो इतने। तो कहते दूसरों को नियम लिवाने पर ही उतारू रहा करते हैं, ऐसे किन्हीं त्यागी साधु जनों को देखकर श्रावक पहले से ही भय करने लगते हैं। ये एक्चुअल ये बात है, बचपन में हमने देखा है नजदीक, हाँ ऐसा ही था, वो भागते हैं उनसे, अभी भी है ऐसा, तो दूर भागा करते कि नहीं न जानो उनके शिकंजे में आया, तो ना तो नहीं कह सकते उनके सामने, तो उनके पास जाना ही नहीं, दूर दूर से भाग जाना। उनके आगे लिखा है उनके सामने जाने का भी साहस नहीं होता है। आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि जो तुझे पसंद है, तेरे अनुकूल है, वही उपदेश इसमें कहा जाएगा। तू भय मत कर और ऐसे शास्त्र का अनादर मत कर। इसमें भय की रंच भी बात न आएगी। तेरा अभिप्राय दुख दूर करने का है और सुख पाने का है, उसी प्रयोजन को पुष्ट करने वाला यह उपदेश होगा। देखो कितनी सहज सरल बात है, क्योंकि जो बिना जाने कुछ व्रत नियम अंगीकार करते हैं और जबरदस्ती उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अभी किया है तो क्या करे, छुटकारा तो नहीं उसमें से, तो ये जबरदस्ती करके उसको जो कुछ आचरण में लाते हैं, पर उससे उनका कोई प्रयोजन तो हल नहीं होता उनका।
यानी ये ऐसा नियम देते हैं कि दिन में इतना समय करो, इतना वो करो,
कोई भी अलग अलग अभी नियम देने के वाले के ऊपर है, अभी क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे
हैं, नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा।
जो पहले के जमाने में हाथ से पाने का नियम देखे मराठी में कहते हैं, वो तो सवले का, किसी का छुआ हुआ नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा ऐसा। तो हमने तो ऐसे तक देखे, हमारे घर में आए थे कोई मुनि उस समय जब मैं छोटी थी, कि तुम ये ऐसा ऐसा व्रत अंगीकार करो नहीं तो मैं कुएं में कूद कर जान देता हूँ, बिल्कुल नाम भी बताऊंगी, अभी यहाँ नहीं कहूंगी, बाद में पूछना। हाँ अभी कोई श्रावक चाहेगा कि अपने निमित्त से कोई मुनि कुएं में उनका पाप को अपना मोल लेना चाहेगा, कि तुम चौका लेके हमारे साथ चलो बॉम्बे तक, यहाँ से छोड़ो नहीं तो मैं कूद जाता हूँ, ऐसे ऐसी बात है, धमकी धमकी है। और किसी को अरेंज कर दिया, पटा दिया,
फिर क्या हुआ पूछते
नहीं वो नहीं कूदने गए ना हम, दादा हो करके कोई दूसरे को साथ में भेज दिया, ऐसा भी कर दे, तुम इतना एकासन का व्रत ले लो, इतने 8 एकासन करूंगा तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, आहार को ऐसे भी हमने देखे कंडीशनर, वो डायबिटीज वाले पेशेंट को बताते हैं, ऐसे करने वाले भी है और उनको बहुत समझते हैं। अच्छा टीवी नहीं देखने का देखो चलो उसमें जितना बोले वो कम है। देखो ये स्वयं के नहीं उसका कैसा अच्छा अर्थ बता दे, ये अपनी ओर से बताते क्योंकि उन्होंने भी समाज में जो चल रहा है उनको भी अच्छी तरह से पता है। वक्तव्य की अभीष्टता, वक्तव्य ने कथन, अभी जो शास्त्र में जो उपदेश आएगा। दुख नाम उसका है जो इंद्रियों को असुहावना लगे, दू नाम है असुहावना लगने का और ख नाम है इंद्रिय का। अच्छा दुख ये कैसे शब्द तैयार हुआ वो बता रहे हैं। हाँ जो इंद्रिय को असुहावना लगे, असुहावना है अच्छा नहीं लगता है, उसे दुख कहते हैं। और सुख नाम यद्यपि इंद्रिय को भला लगने का है, सो सुख में यह जगत का प्राणी साता समझता है, किंतु वास्तव में सुख में भी आकुलता है। जो सुख है ना वो इंद्रिय को जो सुहावना लगता है वो सुख की बात है, वो अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं करेगा, जिसको हम साता कहते हैं। तो कहते उसमें भी आकुलता है, वास्तव में उसमें आकुलता है। सुख की इच्छा तो बताई है आनंद की समता से, सुख से भी परे जो आनंददायक तत्व है उस तत्व की बात को कहेंगे। ये सुख है ने वो इंद्रिय की जो सुहावना लगता है साता, उससे भी पार यहाँ आनंद की बात बताई उसको। तो समता वाला जो आनंद है तो सुख से भी परे उससे भी पार जो आनंददायक तत्व है उस तत्व की बात कहेंगे। यहाँ कोई यह संदेह करे, संदेह नहीं है इसे शक करे कि घर का रहना और विषयों का साधना इनको तज कर उपदेश में जो कुछ भी वर्णन आएगा वह तो कुछ कटु होगा ही। क्या कहते हैं यानी घर का रहना और विषयों का साधना इसको त्याग कर जो वर्णन आएगा तो कोई कटु तो होगा ही होगा। ऐसे संदेह वाले शिष्य का भय मिटाने के लिए आचार्य देव कह रहे, गुणभद्र आचार्य ने भी स्वयं उपदेश दिया है कि यदि उसका जो भय कोई शंका मन में आती है तो उसके पहले निकालने की कोशिश कर रहे। देखो यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदात्व कटु किंचित् त्वं तस्मान् मा भैषीत् यथा तुरो भेषजा दुग्रात्। अभीष्टता के प्रति भय निवारण, यानी अभी जो अभीष्ट उपदेश आने वाला है तो उसके प्रति किसी को भय कोई शंका मन में आती है डरते हैं उपदेश सुनने से तो उसको निवारण करते हैं, उसको रूल आउट करते हैं, निराकरण करते हैं। यद्यपि इस उपदेश में कदाचित ऐसा भी मालूम पड़े कि यह वर्तमान में ऐसा कटु लग रहा है लेकिन इसका भय न करना क्योंकि इसका फल मधुर होगा, मधुर नहीं मीठा होगा। या कहते यद्यपि कदाचित अस्मिन् विपाक मधुरम, विपाक यानी उसका फल वो मधुर है, तदात्व कटु किंचित यानी अभी तो कड़वा जैसा लग रहा है परंतु इसका फल मीठा है। जैसे किसी ने बताने वाली थी उन्होंने बताया और ये उदाहरण शास्त्र में बहुत बार आया, कड़वी दवा है परंतु उससे अपना रोग दूर हो जाता है। जैसे किसी रोग की औषधि में कोई औषधि कड़वी भी हो तो रोगी उस कड़वी औषधि को भी पी लेता है क्योंकि उस औषधि का परिणाम मधुर निकलेगा। क्या मधुर होता है यानी उसका रोग मिट जाएगा। इसी प्रकार इस उपदेश में कुछ कटुता भी मालूम पड़े लेकिन इसका विपाक बड़ा मधुर है उससे तू रंच भी भय मत कर। जो चतुर रोगी होता है वह कड़वी औषधि को भी आगे आराम होगा ऐसे भाव के वश ग्रहण कर लेता है, डरता नहीं है। अरे कड़वी औषधि क्या इंजेक्शन भी लेता है कि नहीं? वो तो चुपता है ना, परंतु उसका फल मिल रहा है ना, निरोगता हो रही है ना, इसको देखकर उसको भी ले लेते हैं। ऐसे ही तू सियाना बन, और इस शास्त्र में कोई उपदेश असुहावना भी लगे तो भी उससे सुख होगा, आनंद दशा होगी, ऐसा जानकर रंच भी मत डर। स्वयं कह रहे हैं ना, स्वयं तस्मात, तस्मात यानी इसलिए, माँ यानी मत, भयशी ही यानी भय मत कर। यथा आतुरो भेषज भेषजादुग्रत, यानी वही तो जो रोगी की वहाँ उसका दृष्टांत दिया। आचार्य देव ने एक आश्वासन दिया है, इस ग्रंथ में कहीं भी कटु लगने वाली बात न आएगी। इस ग्रंथ का उपदेश इतना मनोरम और हितकारी है जैसे कि मानो माता बच्चे को दवा बतासे में रखकर खिला देती है। ये पहले का वेल नोन उदाहरण है, बतासे में डालकर वो कड़वी दवाई पिला देते। आपकी माँ क्या करती थी? ऊपर शक्कर देती थी, क्या देती थी? उस बच्चे को दवा खाने में रंच भी कष्ट नहीं मालूम होता, और उसके फल में वह आरोग्यता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आचार्य देव बड़े प्रिय हितकारी शब्दों में उपदेश देंगे, जो सुनते समय भी भला लगेगा और अगले समय में ही वह हित पाएगा। 7 नंबर के पेज पर आए हैं आचार्य देव की अपार करुणा। यहाँ आचार्य देव कितनी करुणा जाहिर कर रहे हैं, कैसी हार्दिक भावना से मुमुक्षु को समझा रहे हैं, उनकी दया का कौन मूल्य चुका सकता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव को सुयोगवश दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। क्या कहा? सुयोगवश, भाग्य के कारण। ऐसे अभी कोई सहज रूप से अभी हम कहेंगे ऐसा कोई परिणाम हुआ कि उसने मनुष्यायु बांधी और यहाँ जन्म लिया। मनुष्य देह पाना यानी क्या है? मनुष्य पर्याय मिली, इतनी दुर्लभ में दुर्लभ है ये बात। अभी हमारा काल अनुयोग द्वार चल रहा है सुबह में, वो कैसे कैसे परावर्तन करके जीव आता है वो उसकी बात चल रही है, और उसमें भी मनुष्य की दुर्लभता, मनुष्य देह की दुर्लभता। एक इंद्रियों में भी बहुत लंबा काल बिताता है कोई, मैक्सिमम अगर उसमें घूमा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक घूमता है। उसमें से द्विंद्रिय पर्याय मिलना भी अति दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे परिणाम हुए बिना तो नहीं मिलेंगे। उससे 3 इंद्रिय की पर्याय, उससे 4 इंद्रिय की, असंगी की और संगी पंचेंद्रिय की। संगी पंचेंद्रिय हुआ फिर भी वो 3 इंचों में घुमा करेगा, नरक में जाएगा, देव में जाएगा, बाकी सभी सुलभ है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, क्योंकि इस जीव को सुयोगवश दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। तो मिला तो क्या हुआ? ऋषि संतों के उपदेश सुनने का अवसर मिला है। ये शास्त्राभ्यास की मुख्यता मनुष्य पर्याय में जितनी है, ये साधन सामग्री जितनी मिलती है, इतनी अन्य पर्याय में नहीं है। आप कहेंगे क्या बात है, देवों में तो होता है ना, तो कल्याणों को भी चले जाते हैं तीर्थंकरों के, पर वहाँ विषयों की भी इतनी रेल झेल है, तो उसमें भी भोग में भोग चलता रहता है उसका। तो ऋषि संतों के उपदेश सुनने का अवसर मिला है, इन उपदेशों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुभव से जिसके निरुपम आनंद प्रकट होता है। निरुपम यानी उपमा से रहित, उसके किसी उपमा नहीं दे सकते। इंद्रिय सुखों का या अन्य जो आनंद होते हैं उनको कोई उपमा भी दे सकते, पर ऐसे किसी इंद्रिय सुख की भी उसको उपमा नहीं दे सकते, उसको कहेंगे निरुपम, अनुपम कहेंगे। उससे पूछो कि तुम गुरुजनों के उपकार का बदला चुकाने की सामर्थ्य रखते हो। क्या कहते हैं? जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसने आत्मज्ञान और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, क्या वो अपने गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का उपकार चुका सकता है? यानी कितनी जो कहेंगे दुर्लभ में दुर्लभ बात उसको प्राप्त हो चुकी है ना। तो गुरुजनों का एहसान चुकाने में कोई समर्थ नहीं है। जो संकटों से सदा के लिए छुटकारा पाने के उपाय में लगा दे, सदा के लिए छुटकारा, और ये संकट क्या है, अनादि से मोहराग द्वेष ही संकट है, और उसके कायम का छुटकारा जो पाने का उपाय बता दे और यह छुटकारा पा ले, उनके इस उपकार का ऋण किन प्रयोगों से चुकाया जा सकता है। और वे ही गुरुजन हमको बताते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, गुरु शिष्य को जाके ज्ञान उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करता, ऐसे ऐसे दोष इन्होंने हमको पिला है, फिर भी सहज रूप से उनके तो प्रति हमारा अहोभाव कृतज्ञता होगी ही होगी। मिथ्या आशय, आशय ने अभिप्राय, उसकी मान्यता, मिथ्या आशय के आग्रह में उपदेश लाभ का अभाव, आग्रह ने वो हट अपना जो हमने पहले से कुछ मान्यता मान के रखी है वो उसमें अड़के रखते हैं, तो कहते उसके उपदेश का लाभ भी नहीं मिलता। ऐसा भी होता है ना कि उपदेश सहज प्राप्त हो ऐसे अवसर आते हैं, परंतु ये अपने अभिप्राय पर अड़ बैठता है, तो कहते वो उपदेश उसको नहीं के बराबर हो जाता। जैसे बावले पुरुष को, बावला है ना पागल, हितकारी भी चीज दो तो उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस चीज को फेंक देता है, ऐसे ही इस मोहमत्त संसारी जीव को दुर्लभ उपदेश साधन भी मिला है। उसका उपदेश नहीं मिला ये बात नहीं, सुनाने वाले भी कभी मिले, फिर भी यह जीव अज्ञानवश उसकी उपेक्षा कर जाता है। यह प्राणी तो अपने इसी मोह ममत्व में रंगा पगा हुआ है, इसे सुबुद्धि नहीं जगती कि मैं समस्त पर से विविक्त, विविक्त यानी पर से विभक्त, पर से रहित, पर से जुदा, ज्ञानानंद स्वरूप मात्र निज प्रभु की उपासना तो करूं, उसके ऐसे भाव ही नहीं उठते हैं कि मैं तो सभी पर पदार्थों से जुदा हूं और कैसा हूं, ज्ञानानंद मात्र हूं, ज्ञान और आनंद स्वरूप मात्र हूं, ऐसा मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ये निज प्रभु हूँ, उसकी उपासना करना, यहाँ कोई आरती लेके घुमाना नहीं है, अपनी उपासना कराने उसी को जानते रहना, उसी उसी का लक्ष्य करना, उपयोग उसी में लगाना, तो पर्याय में भी ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद प्रकट होता है, उसी को कहेंगे उसकी उपासना करना। ये बात इसमें समाधि तंत्र और आत्मभावना में बारंबार आती थी, उपासना करना, अपना ही अपनी उपासना करना, उसकी आराधना करना। क्या कहते, फिर पढ़ती हूँ। ये जीव कैसा है कि अज्ञान के कारण उपदेश का स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उपेक्षा कर देता है, निग्लेक्ट करता है, उसको ऐसी सुबुद्धि नहीं जगती, मैं समस्त पर से विविक्त यानी पर से जुदा, ज्ञानानंद स्वरूप मात्र निज प्रभु की उपासना तो करूं, मैं अपने आप को सही तो पहचानता रहूं, यानी अपने को पहचानने मात्र की बात है यहाँ, परंतु ऐसे उसको भाव ही नहीं जगता, ऐसा नहीं लगता कि इतने इतने ज्ञानी हो चुके, इतने आचार्यों की परंपरा हुए, भगवान ने स्वयं ये उपदेश दिया है, आचार्यों ने अपना पूरा वैभव छोड़कर कितने राजा महाराजा भी इसके पीछे चले हैं, तो इसमें कुछ ऐसी बात तो अवश्य होनी चाहिए आत्मज्ञान में। चक्रवर्ती तक ने अपना पूरा 6 खंड का राज छोड़ा भी, उसके लिए तो कुछ हासिल करने का बाकी तो नहीं था, सब तो था उसके पास, उसकी छोड़ने की क्या जरूरत आ पड़ी। हमें क्या लगता है बाहर से कोई ऐसा दुखद प्रसंग हो तो ही जीव छोड़ता, ऐसा नहीं, अभी उनका तो सब रेवन चलती है ना, तो फिर भी उनको सुख नजर नहीं आया और उन्होंने आत्मज्ञान के लिए पूरा त्याग करके उसकी साधना में लग गए, परंतु ये जीव को ऐसा लगता है कि उसका उस उपदेश का भी वो उपेक्षा कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है उसको। यथार्थ ज्ञान ही समस्त क्लेशों से छुटकारा देने का उपाय है, अन्य कोई उसका उपाय नहीं। यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना हम आपको कभी संतोष हो ही नहीं सकता। इन्हें कितना भी पैसा कमाओ कहो या कितना भी त्याग भी करो पैसे का, उसमें संतोष नहीं होने वाला। आत्मज्ञान हो तो ही होगा। ये अध्रुव पदार्थ, अध्रुव ने जो कायम नहीं रहने वाले हैं, संयोग रूप में है, जो अहित रूप है उसमें अपना कोई हित नहीं है, भिन्न है, जिनका कुछ भी परिणमन अपने अधीन नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्येक द्रव्य सत है, वो स्वयं अपनी ही योग्यता से स्व समय पर निश्चित पर्याय रूप से ही परिणमित होगा। उसमें उस पर्याय में हेरा फेरी करने के लिए जिनेन्द्र भगवान क्या कोई, जिसको इंद्र, नरेंद्र, जिनेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं। वो आता है ना कि जिस, वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है, वहाँ लिखा है जिस जीव की जिस देश में यानी जिस क्षेत्र में जिस विधि से जिस प्रोसेस से जिस प्रकार से जो जिस काल में जिस क्षेत्र में जिस विधि से जो जैसा होना है वैसा बिल्कुल उसी क्षेत्र में उसी विधि से उसी काल में वो होगा ही होगा। उसको टालने में कोई समर्थ नहीं, ना जिनेन्द्र, ना इंद्र, नरेंद्र, जिनेन्द्र कोई भी समर्थ। तो कहते जिनका कुछ भी परिणमन अपने अधीन नहीं है, यानी प्रत्येक द्रव्य का परिणमन सुनिश्चित है, वो अपने स्वयं से ही वो उस रूप परिणमता है। ऐसे पर पदार्थों का आग्रह करना इस मोही जीव की एक आदत पड़ गई है, जो दुराग्रह करेगा, दुराग्रह खोटा आग्रह, उसको नियम से मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खानी पड़ेगी नहीं, वो तो गिर जाएगा जो कहीं मुखी, वो मुहावरा है उनका, मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खानी पड़ेगी नहीं, जिसका क्या कहते हैं हम, ठेस लग के मुंह के बल पड़ जा गिर जाते हैं, ऐसा मुंह की खानी पड़ेगी। यानी नेचुरली उसको अपयश आएगा उसमें। जो बात संभव नहीं है उसकी हट कर लेना कैसे शांति का कारण बन सकता है। चीज तो अपनी जगह है और यहाँ मान्यता कुछ बनाई जा रही है, तो उसके कैसे सुख रह सकता है। चीज तो अपनी जगह नहीं, जगत में जितने पदार्थ है अपने स्वयं के कारण स्वयं परिणमित हो रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कल्पनाएं बनाते रहता है, मान्यता कुछ बना लेता है कि ये ऐसा हो जाए तो अच्छा, वो ऐसा हो जाएगा अच्छा, तो इसके मान्यता के अनुसार वहाँ परिणमन नहीं होता है, तो ये इसको सुख कैसे होगा। वो क्रिकेट मैच चल रही तो इसको चाहता है कि ये इतना सिक्सर बना दे, तो नहीं बना पाता, वो गेंद है उसका उपादान से जो कुछ क्या आज ठीक है, मैं हमको पता नहीं। तो सुखी हुए कि नहीं उसके कारण सुखी हुए। हाँ, आगे देखते। अनहोनी को होनी करने के दुराग्रह में क्लेश। अनहोनी जो नहीं होने वाली है उसको अनहोनी कहेंगे, और उसको होनी करने के लिए यानी वो हो जाए ऐसा सोचने में क्लेश होता है। कोई बच्चा हाथी जैसे जानवर को देखकर यह हट करे कि मुझे यह मिल जाए। प्रथम तो हाथी का मिलना रखना सबके वश की बात नहीं है, और कोई मिल भी जाए तो हाथी का संरक्षण करना कितना कठिन है। खैर, हाथी वाले को बुलाकर बाप खड़ा करा दे हाथी को, तो उससे भी यह बालक संतोष न करे और यह हट करने लगे, मेरे तो घर में बांध दो। खैर, कोई बाड़ा हो वहाँ खड़ा करा दिया जाए। इसके बाद बालक यह कहे, इसे तो मेरी जेब में रख दो। तो बताओ अब इसकी इच्छा की पूर्ति कैसे की जा सकती है। क्या इतना बड़ा जानवर जेब में रखा जा सकता है। अनहोनी बात की हट करने वाला बालक कैसे सुखी हो। ऐसे ही अनहोनी बात का हट करने वाला यह मोही मानव कैसे सुखी हो। मेरा घर तो ऐसा ही बनना चाहिए, मेरी संपदा इतनी ही बढ़ जानी चाहिए, मेरे घर के प्रिय लोग कभी न गुजरे, मेरे ये विषय सुख के साधन निरंतर बने रहे, यह सारी हट अनहोनी बातों की जा रही है। अनहोनी बात की हट में कभी आनंद का मार्ग नहीं मिल सकता है। क्लेश का आमंत्रण। यह जीव स्वभाव से आनंदमय है, इसको रंच भी क्लेश नहीं है। तो स्वभाव ही जिसका आनंदमय है और ये दुखी है, ये कोई अजनबी अटपटी बात नहीं लगती। जो वस्तु जैसी है उसका उस प्रकार ज्ञान कर ले, स्वरूप भी जैसा है उसका यथार्थ ज्ञान कर ले, फिर कष्ट का कोई नाम ही नहीं रहा। कष्ट तो केवल भ्रम में है, यानी अपना जैसा स्वभाव है ज्ञान आनंद में वैसा नहीं माना है। ये शरीर वाला काला गोरा मैं ऊंचा हूँ ठिंगना हूँ, मुझे जाड़ा होना है बारीक होना है क्या क्या होना है उसको, तो कष्ट तो केवल भ्रम में है। जगत के सभी जीव एक स्वरूप के हैं, क्योंकि जीव कहने मात्र से वो सारे अनंत गुणों के जो अखंड पिंड है और सभी में समान वो सारे गुण है। ऐसा में एक में कोई आनंद गुण ज्यादा होगा या कोई एक में है एक में नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सारे के सारे समान गुण है सभी जीवों में। तो कहते हैं सभी जीव एक स्वरूप के हैं और अपने अपने उपार्जित कर्मों के प्रेरे हुए हैं। है तो सारे एक जैसे, अब ये उपाधि भाव हर एक के लगी अलग अलग। तो कहते उसमें फिर हम वो 14 जीव समास और क्या क्या भागले पार लेते हैं, ये सारे कर्मों की उपाधि से उसमें पर्याय में बातें बन रही है। मुझसे सभी अत्यंत भिन्न है, यानी अन्य जीव से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र है, प्रत्येक अपने में परिणमित हो रहा है। तो मुझसे सभी अत्यंत भिन्न है, लेकिन उन अनंत जीवों में से दो चार जीवों पर यह मेरा है ऐसी दृष्टि डाली जाए। हमने मान लिया ये मेरे हैं, अनंत में से चुन लिया हमने और उनमें मोह बसा लिया जाए, तो यह अनहोनी बात के करने का यत्न है या नहीं, ये आपके हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अनहोनी कभी होने के रूप में आ नहीं सकती, तो मेरा है ये मान लिया ना, मेरा है वाली बात मान ली, तो कोई किसी का नहीं है। हाँ, अभी इस भाव में उनके संयोग में है, पदार्थ में भावा भाव चतुष्टय रूपता, भाव अभाव चतुष्टय रूपता, ये चतुष्टय सबको मालूम है ना, द्रव्य चित्तकार। जिस पदार्थ में जिस प्रकार के परिणमन की योग्यता है उस पदार्थ में उसी प्रकार का परिणमन हो सकता है, यह है पदार्थ की भाव भाव रूपता, भाव भाव जिसको कहेंगे, जो होगा वही होगा। आत्मा में ऐसी 6 शक्तियां मालूम है क्या, भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव भाव अभाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव। तो यहाँ कहते हैं कि भाव भाव रूपता क्या है, कि जिस प्रकार के परिणाम की योग्यता है उसी प्रकार का परिणमन हो सकता है पदार्थ की भाव भाव रूपता। ये तो उस समय की एक एक समय का भी वो भाव भाव लगता है उसमें, उस समय वही पर्याय होगी अन्य नहीं होगी, होने वाली ही होकर ही रहेगी। जिस पदार्थ में जिस रूप परिणमने की योग्यता ही नहीं है, जैसे कि जीव में रूप आदि स्वरूप परिणमने की योग्यता नहीं है, काला गोरा हल्का भारी होने की योग्यता ही जीव में नहीं है, अथवा पुद्गल में जानने की योग्यता ही नहीं है। शरीर और ब्रेन थोड़ा जानने लगे ना कहते तो उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, तो अपने स्वभाव के विपरीत परिणाम का अभाव बना रहा है। क्या कहते हैं, अपने स्वभाव के विपरीत परिणमन का अभाव बना रहना यह है वस्तु की अभाव अभाव रूपता, यानी उस रूप कभी परिणाम नहीं वाला, नहीं उसका, वो हमेशा अभाव अभाव ही होगा। वस्तु में जो बात हो सकेगी उस बात का हो जाना, यह है भाव भाव रूपता। ऊपर जो बताया था, वस्तु में वर्तमान में जो परिणाम है, उत्तर क्षण में उस परिणमन का अभाव हो जाना, यह है भावा भाव रूपता, भाव का अभाव। जो वर्तमान में जो भाव स्वरूप है वो इमीडिएट नेक्स्ट अनंतर समय में अभाव रूप हो जाए, उसको कहेंगे भाव अभाव, भावा भाव। जो परिणमन निकट भविष्य में होगा यानी अनंतर समय में, किंतु वर्तमान में नहीं है, वह परिणमन त्रिकाल हो नहीं सकता, उसका त्रिकाल भी न होना, यह है अभाव अभाव रूपता।
अभाव अभाव एक बार हो गया,
दो बात
अभाव भाव से
उसने उपने स्वभाव के विपरीत परिणाम का अभाव ऊपर बताया था, अभाव अभाव ऊपर बताया था। एक्चुअली ऐसा चाहिए कि जो अभी नहीं है परंतु वह अनंत समय में होगा, वो अभाव भाव हो जाता है, परंतु वो त्रिकाल नहीं हो सकता। जो परिणाम निवृत्त भविष्य में होगा किंतु वर्तमान में नहीं है, एक्चुअली वह परिणाम त्रिकाल हो नहीं सकता है, बीच में जो डाला है ना
वो अलग बात है।
यानी ऊपर की बात जो त्रिकाल नहीं हो सकता वो ऊपर होना चाहिए था, अभाव अभाव रूप ऊपर जो बताया था। अभी ये जो वाक्य है बीच में मैं आपको बता रही हूँ, वह परिणमन त्रिकाल हो नहीं सकता, उसका त्रिकाल भी न होना, यह है अभाव अभाव रूपता। ये ऊपर की जो यह वस्तु की अभाव अभाव रूपता है ना, वहाँ वो होना चाहिए, ये वाक्य वहाँ जोड़ देना। ऊपर जो अभाव अभाव रूपता था ना, हाँ उसी में ये वाक्य भी जोड़ देना कि जो परिणमन त्रिकाल नहीं हो सकता। अब यहाँ जो लिखा है ना, जो परिणमन निकट भविष्य में होगा किंतु वर्तमान में नहीं है, वह है अभाव भाव रूपता।
यानी अभी जो हमने पढ़ा वो ना
अभाव भाव, हाँ
जो अभाव अभाव लिखा है उसमें
नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर के उसमें जो जोड़ देना जी का, फिर से ऊपर अभाव अभाव की बात बताई थी, उसमें परिणमन त्रिकाल हो नहीं सकता, उसका त्रिकाल भी न होना, यह है अभाव अभाव रूपता। वो ऊपर चले जाने दो सब। अब जो परिणमन निकट भविष्य में होगा किंतु वर्तमान में नहीं है, यह एक नया वाक्य डाल, हाँ वह है अभाव भाव रूपता। यानी अभी अभाव है उसका भाव बनेगा। ये आत्मा की जो छह शक्तियां हैं ना, ये कारण कार्य रहस्य पुस्तक में ली है, ये इसी पद्धति से, यानी भाव अभाव भाव भाव अभाव 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 सब ऐसा। यह पदार्थ स्वयं अपने स्वरूप सत्व के कारण मजबूत है, उसे कोई छेद भेद नहीं सकता। यानी उसका परिणमन भी सुनिश्चित है, जो होने वाला वही होगा, जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं हो गया। वर्तमान में नहीं तो भविष्य में वो होगा, जो पूर्व में जो अभाव रूप था वो वर्तमान में हो रहा है, अभाव था उसका भाव हो गया, जो भाव है वो निश्चित रूप से अभाव हो जाएगा। इस तरह से वो सारी शक्तियाँ हैं। किसी पदार्थ की कोई सत्ता मिटाने में समर्थ नहीं है, मैं स्वयं सत हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, सबसे न्यारा हूँ, देह तक से भी जुदा हूँ, मेरा स्वभाव ही मेरा है, वह ही मेरे साथ रह सकता है, अन्य किसी से मेरा साथ नहीं है। ऐसा यह मैं करते डायरेक्ट बता रही है, मैं स्वयं आनंदमय स्वतंत्र हूँ, सर्व कष्टों से परे हूँ। क्यों मोह करने की उद्दंडता की जाए, इसका फल कौन भोगेगा? की जाए के बाद एक प्रश्न चिन्ह, इसका फल कौन भोगेगा? जो मोह करेगा वही कष्ट भोगेगा, दूसरा कोई कष्ट नहीं भोग सकता। अब यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान